परिपूर्ण है। जैसे आकाशवायु तेजल पृथ्वी ये पांच जो भूत है, तो आकाश ही इन चारों भूतों के नीचे ऊपर है। वायु तेजल पृथ्वी के आकाश इनका आधार है, आकाश इनका कारण है, आकाश इसके मां व्यापक है। दूसरा दृष्टांत, जैसे बादल है और उस बादलों के नीचे ऊपर बाहर भीतर आकाश ही आकाश है, और सूक्ष्मता से विचार करके देखा जाए तो बादल क्या वो भी आकाश ही है। क्यों? आकाशात वायु, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से बादल बनता है। निर्मल शुद्ध आकाश है, उसमें क्षण के बीच के मां बादल हो जाता है, और आकाश में वो बादल उत्पन्न होकर के आकाश में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से सारी संसार उस ब्रह्म से उत्पन्न होकर के और ब्रह्म के मन विलीन हो जाती है। तो सारे ज्ञान मात्र भूत प्राणी जितने हैं, एक प्रकार से इसके बाहर और भीतर परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे बादलों का बहुत सा समूह है, उसके नीचे ऊपर बाहर भीतर आकाश ही परिपूर्ण है। तो वही अंतर से भूताना मतरंतर वह परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर है, तो परिपूर्ण है, व्यापक है। और ये सारे भूत प्राणी जो है वो भी उसको परमात्मा को ही स्वरूप है। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है, सपने की सृष्टि के मां जिसको स्वप्न आता है वह पुरुष ही उस सपने के संसार के बाहर भीतर नीचे ऊपर है, और वो सपने की संसार भी वो उसका संकल्प होने से उसका स्वरूप ही है। ऐसे एक प्रकार से वो सपने की संसार भी जिसको स्वप्न आता है वो उसका स्वरूप स्वरूप रहना वही है। इसी प्रकार से यह जो संसार ब्रह्म को संकल्प होने के कारण से ब्रह्म को स्वरूप ही है, तो वो परमात्मा ये चराचर यान मात्र के बाहर भीतर परिपूर्ण से हम लोग बैठे हैं, तो हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है, व्यापक है। आकाश की जो आकाश दृढ़ है, परमात्मा चेतन है, आकाश अनित्य है, परमात्मा नित्य है, आकाश शून्य है और परमात्मा आनंद घन है। आनंद घन है ये बात शास्त्रों में जगह जगह बतलाई है। ब्रह्म सूत्र की पहली अध्याय और पहला जो पाद है उसके बारहवें सूत्र के मां ये बात बतलाई है। अन्य अभ्यासात ये सूत्र, इसका अर्थ होता है कि ये अन्य में जो शब्द उपनिषदों में जो आया है ये ब्रह्म का वाचक है, संसारिक सुख का नहीं। आनंद मय जो शब्द है, ये मय जो शब्द है, मय प्रत्यय से मय बनता है, और मय प्रत्यय विकार अर्थ में और प्रचुर अर्थ में होता है। यहाँ मय प्रत्यय का अर्थ विकार अर्थ में है, प्रचुर अर्थ में। प्रचुर का अर्थ माने घन, आनंद मय माने आनंद ही आनंद, आनंद की घनता। जैसे बर्फ है तो उसमें पानी पानी है, जल जल और कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से केवल आनंद ही आनंद हुए, इस से आनंद धन। संसार का कोई भी दृष्टांत उस आनंद धन को समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सब जितने दृष्टांत है, उदाहरण है, सब जड़ पदार्थों का है, और वो है चेतन है। किस वास्ते वो परमात्मा जो आनंद है, जो है वो चेतन है और घन है, माने आनंद ही आनंद है। तो आनंद में अभ्यासात क्यों वो यह आनंद सब गुरु का बात है कि अभ्यासात, अभ्यासात का मतलब है कि वह ये बात बतला, ये उपनिषद में जहाँ पर यह प्रकरण आया है कि सारी संसार आनंद सहत उत्पन्न होती है और आनंद के स्थित आनंद में विलीन हो जाती है, आनंद से जीती है। इस वास्ते जो कुछ है तो आनंद ही आनंद है। तो वो ये लक्षण ब्रह्म का होता है, इसलिए ये आनंद शब्द ब्रह्म का वाचक है, संसारी सुख का नहीं। तो इस प्रकार से एकांत के वहां बैठ करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए कि एक आनंद के वहां परिपूर्ण है, और यहां से उठकर चले तो ऐसा समझे कि हम आनंद में ही जा रहे हैं। कोई रेल में हम चलते हैं तो समझे कि यार रेल और मैं सब आनंद के वहां से जा रहे हैं। मटर में बैठे तो मटर के बाहर भीतर आनंद, मेरे बाहर भीतर आनंद, हम आनंद के मैं मटर जा रही है, आनंद के मैं जा रहा हूं। तो चलते उठते बैठते खाते हर समय के बीच में ऐसा समझे कि हम आनंद के मैं हेतु विचरण कर रहे हैं। और ये जिसने जो विचरण करी है जो चीज है इनका ये रूप जो है दृष्टि से तो सब आनंद या आनंद का संकल्प होना चाहिए, पर वास्तव के वहां यह आकार विकार किच्छु नहीं होकर केवल एक आनंद ही है। इस आकार विकार का जब अत्यंत अभाव हो जाता है तब केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं, वो आनंद नहीं है। परस्त समातु भाव व्यक्तो व्यक्त सनातन है, जिसे सर्वेश भूतेषु नष्टेषु न विनश्यति। भगवान ने गीता की आठवीं अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, इसका भाव यह है, परस्तस्मात् भावयन्नो व्यक्तो व्यक्ता सनातन है। ये जो एक अव्यक्त जो प्रकृति है या अव्यक्त जो ब्रह्मा का निराकार स्वरूप है, उस अव्यक्त से ये दूसरा जो सनातन जो पर भाव वाला अव्यक्त है, परस्तस्मात् भावयन्नो व्यक्तो व्यक्ता सनातन है। ये जो जड़ प्रकृति या जो व्यक्त है, इससे एक अलग दूसरा सनातन भाव वाला जो अव्यक्त है परमात्मा, ये सारे भूतों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। जैसे आकाश में बहुत से बादल हैं, उन बादलों के नाश होने पर भी आकाश का नाश नहीं होता, इसी प्रकार सारी सृष्टि के नाश होने पर भी ब्रह्म का नाश नहीं होता। सबके अभाव होने के बाद जो भाव रूप जो चीज है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। ऐसा वो एक रकुंश आनंद है। तो नीचे ऊपर बाहर भीतर जो आनंद ही आनंद जो प्रतीत होता है वो प्रत्यक्ष के बीच में वो तो सत है। और ये जो आकार विकार वाली चीज है, ये नाश तो हमें क्षण भंगुर अनित्य होने से असत है। आकाश जो है सदा रहता है और बादल होते और मिटते रहते हैं, इसी प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हो और विनाश हो, इस बात से नाशवान है, नाशवान होने से असत है। और वो परमात्मा सदा एक रूप एक रस में रहता है, इस बात से वो सत्य और नित्य है। तो आनंद तो यहाँ सत है और ये सब चीज अनित्य है, शरीर और संसार ये नाशवान अनित्य है और वो स्वनित्य है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यतु अविनश्यं तं यः पश्यति सः पश्यति। यह भगवान ने गीता की 13वीं अध्याय के 27वें श्लोक में बताया है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं, परमेश्वर जो है सारे भूतों के मन सम भाव से स्थित है और नाश होते हुए सारे भूतों के मन उसका नाश नहीं होता, ये जो समझता है फिर ठीक समझता है। तो ये सारे पदार्थ तो नाशवान है, कल्पना मात्र है, अनित्य है, और परमात्मा नित्य सत्य भाव रूप है। इन सब के मिट जाने पर भी वो नहीं मिटता, वो कायम रहता है। तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ प्रतीत होता अपना शरीर संसार, ये तो नाशवान है, स्वप्न मात्र है, माया मात्र है, कल्पना मात्र है, और परमात्मा नित्य और सत्य है, आनंदमय है। तो आनंद में जो परमात्मा है वो ही सत्य है। ऐसा अनुभव करे, इसी का नाम ध्यान है कि आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद के साथ दूसरी वस्तु उसको नहीं है। तो ये नीचे ऊपर बाहर भीतर राजा के आनंद ही आनंद है, वो आनंद तो सत्य है और नीचे ऊपर बाहर भीतर ये जिसको बताया जाता है, ये सब पदार्थ शरीर ये सब अनित्य होने से असत्य है, ये सब माया मात्र है, कल्पना मात्र है, और वो सत्य वस्तु है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। जिसका कभी अभाव नहीं हुआ वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार है, सब ब्रह्म। इस तरह से निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते करते संसार का शरीर का अभाव जाने के ऊपर अपनी केवल एक ही चीज रह जाती है, और ये भी उस ब्रह्म के बीच में ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म से कोई अलग चीज नहीं रहती। जैसे घड़े के फूटने से और घड़े का आकाश और महाकाश मिलकर एक ही हो जाता है, ऐसे आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक ही चीज शेष में रह जाती है। तो घड़े रूपी जो एक उपाधि है उनको नाम अज्ञान है, और उस अज्ञान को नाश हो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से। तो ये जो बात आपको बतलाई है परमात्मा के ज्ञान की बात बतलाई, इस परमात्मा के ज्ञान से थी वो अज्ञान का नाश हो जाता है, फिर ज्ञान भी खुद शांत हो जाता है। जैसे दियाशाही में आग प्रकट होकर के दियाशाही को भस्म कर देती है और आग भी स्वयं शांत हो जाती है, इसी प्रकार से थी वो अपने परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वो अज्ञान को जाना विद्या को नाश कर करके वो स्वतः शांत हो जाता है और शेष में बच रहता है वो ब्रह्म का स्वरूप रह जाता है। फिर वहां कोई भेद नहीं रहता है, वहां आत्मा परमात्मा दोनों एक ही चीज रह जाती है, और उसके सिवा कोई भी चीज उन्हें मन न बुद्धि न शरीर संसार सबका वहां अत्यंत अभाव होकर के और आनंद भी रह जाता है, और उस आनंद का अनुभव उस आनंद को ही है। इस वास्ते हर वक्त वो आनंद ही आनंद एक प्रकार से अपने आप में स्थित, इतना आनंद जिसकी सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। तो इस बात को समझ करके और हर वक्त उस आनंद का ध्यान कर करके उस आनंद में तद्रूप हो जाना चाहिए, शरीर और संसार को भूल जाना और आनंद के मान हर वक्त मस्त रहे, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। फिर यदि ज्ञान हो जाए तो ये समझे कि शरीर और संसार है, ये तो प्रतीति मात्र है, संकल्प मात्र, स्वप्नवत माया मात्र है, वास्तव के मान नहीं है, प्रतीति वर है नहीं और है यहाँ वो परमात्मा ही। तो इस माप का भाव होने से ही संसार मिट जाती है और परमात्मा ही रह जाता है। जैसे सपने के बीच में जब ऐसा कोई वक्त में अनुभव होता है कि भाई ये सपना है या सच्ची बात है, तो फिर ये होता है कि ये तो सपनी है, इतना भाव होने के साथ आंख खुल जाती है, अपने को इस जागृत शरीर में देखता है। सपना और सपने के संसार का नामो निशान नहीं रहता, वो कहां गया क्या हुआ, भूल भी जाता उसको याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसके मन ये भाव है वो मिथ्या है असत है, इस वास्तव को भूल जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद इस शरीर संसार को वह भूल जाता है, इसका ज्ञान भी नहीं रहता, और ज्ञान हो तो उस समझता है कि स्वप्न वक्त माया मात्र, कल्पना मात्र है। इसी प्रकार साधन काल के बीच में यदि इसका फिर अन्न निश्चित होने पर फिर शरीर संसार का ज्ञान हो जाए, फिर यह समझना चाहिए कि माया मात्र, संकल्प मात्र, सपने मत है, ऐसा समझकर फिर समझने के साथ ही भूल जाता वो, और भूल करके फिर अपने ब्रह्म रूप रह जाता है। तो इस प्रकार से उस आनंद में के मां ऐसा हर वक्त ध्यान के मां मस्त रहे साधन काल के बीच में, कि बस उस आनंद में के साथ दूसरी वस्तु ने गुंजास नहीं देगा, है ही नहीं, ऐसा अनुभव कर करके शरीर और संसार को भुला देवे, हर वक्त संकल्प रहित होकर के रहे, पूर्णा रहित होकर के रहे, संसार से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, शरीर से और संसार से, और केवल एक विज्ञान ब्रह्म है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसा जो सो विज्ञान आनंद ब्रह्म, एक ब्रह्म के सो और दूसरी वस्तु ऐसो नहीं है, इस प्रकार से की अनुभव करने के साथ ही वो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और फिर वो सदा ही प्राप्ति रहती है। साधन काल में भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानो प्राप्ति हो ही गई, किंतु फिर साधन काल के मां देह के मां स्थिति हो जाए, शरीर संसार का ज्ञान हो जाए तो यह समझना चाहिए वो साधन है, उस कोटि का है। फिर वास्तव में उसकी ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद तो इस देह में शरीर के मां वो कभी वापिस आता ही नहीं, न तो पुनरावृत्ति न तो पुनरावृत्ति, फिर वो वापिस नहीं आता, फिर वो वापिस नहीं आता। इस प्रकार से श्रुति है तो कहती लोगों के शरीर में जिसकी उसकी व्युत्थान अवस्था जागृत अवस्था होती है, तो लोगों के शरीर में लोगों को इस शरीर के मन बुद्धि दिखते हैं, तो उसका जो मन बुद्धि शरीर है वो संसार की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में नहीं, उस ब्रह्म के तो वहाँ दृष्टि न सृष्टि कुछ भी नहीं है, वहाँ तो दृष्टि सृष्टि दोनों का अभाव। तो ये जो प्रतीति होती है वो एक प्रकार से संसार के आदमियों को प्रतीति होती है, उस शरीर के मां मन बुद्धि की ये विशेषता है, उसकी बुद्धि के बीच के मां यह संसार और देश काल और अंतकरण ये सभी कल्पित स्वप्नवत प्रतीत हुए, केवल कल्पित प्रतीत हो उसके बीच के माने कल्पना मात्र है, वास्तव के बीच के मां नहीं है, ये प्रत्यक्ष उसको अनुभव होता है, ये सब कल्पना मात्र है। जैसे जागने के बाद के मां स्वप्न और स्वप्न की सृष्टि और स्वप्न का पदार्थ जो कुछ है सब एक रकम से अपने कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है और उनका जो शरीर है और उनके शरीर का जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के बीच के मां यह संसार प्रतीत होता है, वहां भी इसका प्रत्यक्ष अभाव दिखता है। अब वो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो उस वक्त में भाव रूप दिखता है, वो एक वास्तव के बीच में सतरूप दिखता है। जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो तो भाव रूप, वो तो वास्तव के मां है, अरे ये नहीं है, वो आनंद में जिनमें ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप अपने भाव स्वरूप जो परमात्मा है उसका तो एकदम प्रत्यक्ष की मापक अनुभव है, और उसके सिवा वो सब चीज का प्रत्यक्ष में अभाव है। जैसे मरुभूमि के बीच के मां अपने जल प्रतीत होता है किंतु वो जल है नहीं, इस बात के तत्व को जो जान जाते हैं उनको जल दिखता है तो वो समझता है कि जल बिना है दिखता है या जल नहीं है। इसी प्रकार से संसार दिखते हुए भी वो समझ जाता है कि यह बिना ही दिखती है। ऐसे ही नेत्रों में जिसके दोष होता है उसको आकाश में तिलमिले दिखते हैं और वो समझ जाता है कि यहाँ आकाश या तिलमिले नहीं है, ये नेत्रों के दोष से दिखता है। इसी प्रकार से थी वो प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है यह संसार और शरीर कुछ भी तो नहीं है, ये बिना है तो दिखते है, इसी का नाम माया है। माया का नाम है कि जो चीज हो नहीं प्रतीत हुए तो यह संसार उसको यूं प्रतीत की माया मात्र है नहीं। और ब्रह्म के विषय के मां एकदम प्रत्यक्ष चीज एक है, इस प्रकार से उसके अंतःकरण की विलक्षणता है, किंतु उसके भीतर के मां जो पहला जो चेतन था आत्मा बोल करके जीवात्मा बोल करके वो तो ब्रह्म के मां मिल जाता है, वो तो ब्रह्म ही हो जाता है, उसका तो शरीर संसार से संबंध नहीं रहता, किंतु उसके शरीर के अंतःकरण की बात आपको मैं बतलाइए तो उसका जो अंतःकरण है वही महात्माओं का अनुभव है, और वो अनुभव है वही वेद है, और वेदों के बाद जो वर्णन आता है कि परमात्मा सत्व ज्ञानंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो महापुरुषों का जो अनुभव है, ज्ञानी महात्माओं का जो अनुभव है वो यशो वेद यशो कहे। ब्रह्मा जी के द्वारा वेद प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी का जो भाव है वही वेद है, और वही ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा उच्चारण किया गया, वो ब्रह्मा जी का अनुभव कहो, ऐसे महापुरुषों के अनुभव की बात को एक ही बात है। तो हम लोगों को हर वक्त उस परमात्मा के अणु में स्वरूप में मस्त रहना चाहिए। अणु के स्वर किसी के बीच के वहां सतबुद्धि नहीं होनी चाहिए। वो अणु में परमात्मा सत्य है, वो भाव रूप है, वो चेतन है, और चेतन है वही आनंद है, आनंद है वही चेतन है। चेतन और आनंद कोई दो चीज नहीं है। आनंद को समझाने के लिए बताया गया कि ये लौकिक आनंद की मात्र नहीं है, वो चिन्मय आनंद है परमात्मा का। और चेतन को ये बताया गया कि वो जो आप चेतन जो रह जाता है, चिन्मय जो रह जाता है, उसको समझाने के लिए उसके प्रयास कर देते हैं। वो ऐसा चेतन है कि ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप, और वो चेतन जिसको बोध ज्ञान स्वरूप है वो ही आनंद है। उससे आनंद को चेतन से अलग कोई आनंद चीज नहीं है, और वो एक प्रकार से वास्तव में निश्चय ध्रुव सत्य, इस बात से उसको सत्य सत्य कहा जाता है, और सत्य उस चेतन से कोई अलग चीज नहीं। तो ऐसा जो उस परमात्मा का स्वरूप है, तो ऐसे अणु में परमात्मा के स्वरूप में हर वक्त अपना मत रहना चाहिए। वो कैसा आनंद है कि शांति स्वरूप है, माने शांति भगव स्वरूप है। बल्कि प्राप्ति होने के बाद में मन बुद्धि इंद्रियों में शरीर में सब परम शांति हर वक्त रहती है। प्रसन्नता को, शांति को, आनंद को, इस प्रकार एक प्रकार समझाने के बाद से ये अलग अलग शब्द कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, रोम रोम में, अणु अणु के बीच में मन आनंद परिपूर्ण है। मन आनंद ही आनंद है, ये सब चीज नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। बर्फ के ढीले में केवल पानी पानी जड़ी जड़ है, और कोई चीज दूसरी नहीं। तो इसी प्रकार से वहां एक आनंद की स्वा और कोई वस्तु दूसरी नहीं है। तो इस प्रकार से बारंबार उनका आनंद का विशेषण देकर के और उस आनंद के स्वरूप का अनुभव करने से कि वो कैसा आनंद है कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद, बस आनंद ही आनंद है, उसके स्वर दूसरी वस्तु नहीं है। इस तरह से आनंद का हर वक्त अनुभव करने से, अनुभव करना ही ध्यान है, और ध्यान करना अनुभव है। इस प्रकार का हर वक्त ध्यान रखे, लक्ष्य रखे, अनुभव करता रहे, तो फिर वो आगे जाकर के आनंद ही बन जाता है, अपार आनंद, चिन्मय आनंद बन जाता है। और इस प्रकार का वो सदा समझो कि लाखों ब्रह्मा हो मर उससे कोई नहीं, वो प्रलय में जैसा वो प्राप्त नहीं होता। और वो फिर संसार के माध्यम से लोग जन्म मरे से जन्मता नहीं मरता है, वो तो एक प्रकार से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म के तद्रूप बन जाता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं रहता, उसकी अद्भुत अलौकिक स्थिति उसको हो जाती है, विलक्षण स्थिति हो जाती है उसकी, वो स्थिति अनिर्वचनीय है। तो इस प्रकार से साधन करना चाहिए, ऐसे ध्यान के मां हर वक्त मस्त रहो। जैसे गोपियां भगवान को कुछ अपनी उजारा से ज्ञान से अपने मतलब जितने जो भक्त सब उजार हुए, तो निश्चय जो
ज्ञान मिलता है वो तो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है। इस प्रकार से भगवान ने ये गीता की चौथी गीता की सातवें अध्याय के 17-18 के श्लोकों में बताया। और भी इसी प्रकार से की भला संसार में ऐसा कुछ है भगवान के समान आपने प्रेमी, जिन्होंने कहा ये समान प्रपद्यंते संसते वयम हम। ये गीता की चौथे अध्याय के 11 के श्लोक के पूर्वार्ध में जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ, जो मेरा ध्यान करते हैं उसका मैं ध्यान करता हूँ, जो अपने आपको और सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है मैं मेरा सर्वस्व उसके अर्पण कर देता हूँ, जिस प्रकार से जो मैंने भजा उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। समोहानुसार भूते से मैंने जैसे सुना प्रिय ये भजन की तो मांग भक्ता मन के पैसे चाप हम। मैं सारे भूतों में समभाव करते थे, न कोई मेरे प्रिय है न कोई मेरे अप्रिय है, क्योंकि जो प्रेम से मुझको जो भजते हैं उनको मैं तो भजता हूँ। जो मेरे भक्त प्रेम से जो भजते हैं वो मेरे हृदय का माँ और उनके हृदय का माँ मैं हूँ। अगर मैं इसके हृदय में निवास करता हूँ और वह मेरे हृदय के माँ नित्य निवास करता है, कितना उत्कोटि का भाव तो बचा है। और अनंत प्रेम के करने से सब प्रकार से उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। भक्त में नया सत्य अहमेवन जुने जाते दर्शन करते हैं प्रवेश कर परम कर अनंत भक्ति के द्वारा अर्जुन ने उसको आपने दर्शन दे सकता हूँ जैसे तुमको दिया। और तत्व से मैं तत्व स्वयं भी जानना ना सकता हूँ और वो मुझ में प्रवेश करना चाहो तो प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए फिर भगवान के नाम प्रेम करना चाहिए, भगवान के नाम अपनता करनी चाहिए, भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा रखनी चाहिए। भगवान के सिवा कोई बात की इच्छा करता है तो चीज इच्छा से मिलती नहीं। कोई पुत्र चाहे तो इच्छा करने से पुत्र नहीं मिलता, कोई लखपति होना चाहे तो इच्छा करने से उसको धन नहीं मिलता, कोई आरोग्य देना चाहे तो इच्छा करने से कोई आरोग्य नहीं हो जाता, कोई बहुत बस जीना चाहे तो जी नहीं सकता। कोई प्रकार की इच्छा की पूर्ति इच्छा करने से नहीं होती, वो तो तकदीर से होती है। पर भगवान इच्छा करने से मिलती, भगवान कहते जो मेरे को चाहता है उसको मैं चाहता हूँ। जब इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं तो और सब इच्छा का त्याग करके फिर भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा करनी चाहिए। ये भगवान के मिलने का बहुत ही सुगम और सरल उपाय है। भगवान के लिए अपनता, प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हो, ये अपनता आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सखा हो, आप ही हमारे जीवन धन और प्राण हो, आप हमारे स्वामी और संजय ईश्वर हो, आप ही सर्वस्व हमारे। ये जो अपनता का भाव है उसको पीता है तो प्रभु में अपनता, प्रभु में प्रीति और प्रभु के मिलने की तीव्र इच्छा और संसार से अहंता ममता आसक्ति कामना को एकदम उठा जाए और तीव्र भगवान के न विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, भगवान से मिलने की इच्छा रखनी चाहिए। ये खेल से बढ़कर अपने फायदे में उपाय है और ये सुगम भी है। हमने सोचा सत्तम योजना समृति विकसित है ऐसा हम सूर्य पार करने की प्रसिद्ध योजना है गीता की आठवीं अध्याय के 14 के शिविर में भगवान कहते हैं अनंत कृपा उस नित्य निरंतर जो मेरा समय करता है उस नित्य निरंतर समय करने वाले ये भक्ति लिए मैं फिर भी सहयोग मिल जाता हूँ। इसको सबसे सहज होता है यही मैंने की सभी के सामने के मंत्र सर जाना भक्ति हुए मैं स्वामी जी के सामने यही मैंने की सर के सामने मध्य के मंत्र सर जाना भक्ति हुए सहयोग मैंने सारे योगियों में कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, जितने भी योगी है योगी मैंने भगवान की प्राप्ति का जो समग्र योग है और उसके करने वाले योगी जितने प्रकार के योगी है सब जो है उत्तम से संपूर्ण है मध्य पंचात्मा मेरे में अंतरात्मा मैंने मन बुद्धि जी ने लगा दिया है मेरे में और परम श्रद्धा से की जो मुझसे भक्ता है मेरे मत में वह सर से बढ़ करके परम मेरा भक्त है परम योगी है सर से बढ़ करके उत्तम से उत्तम मेरे सिद्धांत पुरुष है ऐसे भगवान ने माखा ऐसे प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करती जो अनंत भाव से भगवान से जो भक्त हैं भगवान उनकी प्रभाव से रक्षा करते हैं जो अनंत भाव से कीर्तन करते हुए और जो मेरी उपासना करते हैं मुझसे मेरे में जीव है उनका मैं योग से अनुभव करता हूँ अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा करना स्वयं है घंटे साधन में रक्षा करता हूँ उसके मन की कमी है जो इसको प्राप्त नहीं है उसमें प्राप्त कर दिया है यह भगवान ने गीता की नई अध्याय से 22 के श्लोक में कहा है तुम भगवान के पीछे में उद्धार कर देता हूँ मेरे अनंत भक्त का जो समय सही करता मत संसार का गया भगवान ने निचला उपचार कर नई आदेश चेतन नई आदेश चेतन पेशान पेशान जिन पुरुषों ने निगमी पुष्प लगा दिया उन पुरुषों का मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से की शिविर उद्धार कर देता हूँ दिन का काम नहीं इसलिए हम लोगों के सुंदर की अध्यय का ही खेल करके भगवान का ही अनंत भाव से नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए
Thank you.